मायापुर धाम औदार्य धाम है। औदार्य का मतलब उधारता, उधारता। इस दुनिया में भी लोग उधार बहुत लेना पसंद करते हैं ना, उधार सबको पसंद आती है। ये औदार्य धाम है। चेतना महाप्रभु महावदन्या है, फिर यहां भी महावदन्या बहुत उधार है। तो औदार्य धाम गोलोक वृंदावन माधुर्य धाम है। वृंदावन माधुर्य है, मायापुर औदार्य औदार्य है। श्री कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम है, चेतना महाप्रभु अति दयालु है। सो श्री प्रभुपाद चेतना चरितामृत के तीसरे श्लोक, चेतना चरित में पहले चौदह श्लोक पहले संस्कृत में है। चौदह है। इसमें श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी सूक्ष्म रूप से, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने सूक्ष्म रूप से संस्कृत के 14 श्लोक वो हैं, और फिर 3 श्लोकों में 3 जो गौड़ीय वैष्णव के प्राणधन ठाकुर है, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव जी, राधा गोपीनाथ, उनकी प्रार्थना की है। ये सूत्र रूप में सारी चेतना चरित में 3 श्लोकों में बोल दिए संस्कृत में, फिर इनका विस्तार किया है। तो तीसरा श्लोक जो है जिसके ऊपर आज का प्रभुपाद बोल रहे, प्रभुपाद ने सिर्फ आखिरी जो लास्ट लाइन है श्लोक की उसके ऊपर बोला है। लास्ट लाइन क्या है आप देख लीजिए, न चैतन्यात् कृष्णात् जगति पर तत्त्वम् परम इह, सिर्फ एक लाइन के ऊपर बोला। इसके आगे 3 लाइन और इस श्लोक की है। यद अद्वैतम् ब्रह्म उपनिषद यदप्य अस्य तनोभा य आत्मांतरयामी पुरुष इति सो अश्यांश विभव षड ऐश्वर्य पूर्णो स इह भगवान स स्वयं अयम। प्रभुपाद ने ये कहा है, जब स्वयं उच्चारण किया है तब ये कहा है। और इन श्लोकों का ऊपर भावार्थ, पूरा चेतना महाप्रभु इसी का भाव, चेतना चरितमृत इसी का भावार्थ है, इसलिए श्लोक का भावार्थ श्लोक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन प्रभुपाद ने इसका भावार्थ इस प्रवचन में दिया है। लेकिन इस श्लोक की व्याख्या, दूसरा अध्याय पूरा इस श्लोक की व्याख्या है। चेतना चरितमृत का दूसरा अध्याय आदि लीला का जो शुरू होता है वो इसी श्लोक को समझाने के लिए है। आज हमने जो अभी सुना इसमें श्री प्रभुपाद जी विशेष रूप से हमको क्या कहना चाह रहे हैं, आज हमने जो सब पढ़ा इसमें आप थोड़ा सा ऐसे क्या आपने क्या विशेष इसमें से ऐसी चीज देखी जिसके ऊपर प्रभुपाद जी हमारे को बल देकर कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं? बहुत सुंदर प्रभु जी कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने एक ही बात की विशेष बल दिया है कि श्री कृष्ण भगवान ने जो 5000 साल पहले भगवद गीता में कहा और वही श्री चेतना महाप्रभु ने 500 साल पहले फिर भारतवर्ष के लोगों को समझाया। और उसमें प्रभुपाद जी ने सिर्फ एक बात और लिखी है कि कृष्ण भगवान की शिक्षाओं को लोग भूल गए थे, अथवा उसके ऊपर लोगों ने अपनी टिप्पणी करके उनका असली रूप ही बिगाड़ दिया था, इसलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण किस कैसे आए, बोले भक्त के रूप में आए। भक्त के रूप में आए, क्यों भक्त के रूप में आए? कृष्ण की शिक्षा क्या है भगवद गीता में?
सब
मेरा भक्त बनो, मेरा भक्त बनो। अब कोई कहे किसी को भक्त बनो, जब तक स्वयं भक्त नहीं बनेगा तो किसी को भक्त कैसे बनाएगा। यह आचार्य की परिभाषा है कि जब आचरण नहीं करेगा स्वयं तो दूसरे को, मैं आपको कहूं कि आप भगवान का नाम जपो और मैं नहीं जपूं तो आप कैसे जपोगे। ये तो सिद्धांत सीधा सा है ना। तो चैतन्य महाप्रभु कैसे आए, भक्त रूप में, भक्त रूप में आए और श्री कृष्ण की शिक्षा के मेरे भक्त बनो, इसी को ही हमको शिक्षा दिया। बहुत सीधी सी बात है कि भक्त के रूप में क्यों आए, क्योंकि हमको भक्त बनना है। और क्या कहे श्री कृष्ण भगवत गीता में, क्या कह रहे, भाव मत भक्तो, भाव मत भक्तो। भक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर्वधर्मान परित्यज, भक्त बनने के लिए ये करना पड़ेगा। भक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान से प्रेम करना पड़ेगा, भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, तब भक्त बनेंगे। तो फिर और किसी की सेवा और प्रेम करने के लिए समय नहीं बचेगा। भगवान से प्रेम और भगवान की सेवा करेंगे तो फिर और किसी की सेवा और प्रेम करने के लिए समय बचेगा ही नहीं। ये पूछ लो पुजारियों से, सुबह उठते हैं 3 बजे से रात को 10 बजे तक, इनके पास समय है ही नहीं कुछ और करने का। जो भगवान की सेवा में लगे उनके पास समय नहीं है, जो भगवान की सेवा नहीं करते उनके पास बेकार का फालतू समय बहुत सारा है। तो ये मुख्य आज के प्रवचन में मुख्य एक संदेश ये था कि श्री कृष्ण भगवान ने शिक्षा अर्जुन को दी, तब से भगवान के रूप में खड़े होकर दी कि मैं भगवान हूं, अहम सर्वस्य प्रभव। और चैतन्य महाप्रभु ने जब यह शिक्षा दी तो एक भक्त के रूप में दी। सामान्यतः भक्तों के बीच में स्वयं कीर्तन किया और कीर्तन करते हुए स्वयं कीर्तन किया, सबने भी कीर्तन किया। तो ये एक शिक्षा बहुत बड़ी, इससे हमको ये मिलती है, अगर हमको प्रचार करना है यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने आगे हमको कह दिया, ये जो प्रभुपाद ये शब्द कह रहे हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, ये कहां कहे, किसको कहे मालूम है, एक गृहस्थी को कहे, कूर्म ब्राह्मण को कहे। दक्षिण भारत में चैतन्य महाप्रभु कहीं रुके किसी गृहस्थी के घर पे, जब जाने लगे उसने बोला मैं आपके साथ चलूंगा, पर नहीं मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं है, जाए वहीं रखो, एक ही काम करो, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारी आज्ञा हो गुरु है तार ए देश। चैतन्य महाप्रभु ने एक काम तो ये किया कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को भक्त के रूप में आकर हमको दिया, और फिर एक और आदेश भी दिया कि तुम भक्त बनो और ये शिक्षा दूसरों तक भी दो। और ये बात प्रभुपाद ने बहुत सूक्ष्म रूप से कैसे कही है, जो श्री कृष्ण ने कहा वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा और वो हम कह रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा वो हम कह रहे हैं, हम वही कह रहे हैं, एक शब्द लिखा ना, हम भी वही कह रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भगवान हैं। ये बहुत बड़ी शब्दों को कोई ऐसे पढ़ेगा तो ऐसे लगेगा कृष्ण ने वही कहा तो कृष्ण है वही, तो चैतन्य महाप्रभु भी वही है, और मैं वही कह रहा हूं तो मैं भी वही हूं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी सारी, ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बहुत सावधानी से कहा कि बहुत से मूर्ख लोग इस दुनिया में ऐसी बातें करके भ्रमित लोगों को कर रहे हैं। तो एक ये मुख्य बात आज के प्रवचन से हमने देखी। और क्या मुख्य बात, कोई विशेष मुख्य, एक और दूसरा मुख्य संदेश आपके विचार में आज के इस प्रवचन में क्या था, वेदांत सूत्र और भागवत में कोई अंतर नहीं है, वेदांत सूत्र और भागवत में कोई अंतर नहीं है। और फिर प्रभुपाद जी ने लिखा है कि व्यास देव ने वेदांत भागवत के हर अध्याय को पूरा होता है वहां लिखा है ब्रह्म सूत्र भाष्य। इसका मतलब भगवत गीता श्रीमद् भागवत और ब्रह्म सूत्र एक ही है। और फिर प्रभुपाद ने ब्रह्म सूत्र का एक श्लोक बोला अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, फिर भागवत का एक श्लोक बोला पहले स्कंद का जीवस्य तत्व जिज्ञासा, ये श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय या चौथे अध्याय में कहीं है कि मानव जन्म का लक्ष्य है क्या करना, तत्व जिज्ञासा। तत्व जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो किसकी जिज्ञासा करनी चाहिए, ब्रह्म की। तो तत्व क्या है, ब्रह्म। तो भागवत में श्री कृष्ण में और चैतन्य महाप्रभु में अंतर नहीं है, लेकिन एक अंतर था, वो क्या था कि भक्त के रूप में आए थे। और भागवत और वेदांत सूत्र में अंतर नहीं है, लेकिन एक अंतर है, वो अंतर क्या है, वो अंतर है कि वेदांत सूत्र पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है, उसका दुख सब नहीं पढ़ सकते। केवल गुरु के आश्रम में जाकर योग्य व्यक्ति पढ़ सकता है, स्त्री तो जा ही नहीं सकती है। लेकिन भागवत को स्त्री पढ़ सकती है, ये विशेष फर्क है, ये विशेष अंतर भी है। इसलिए भागवत के पहले ही श्लोक में मंगलाचरण में व्यास देव ने ब्रह्म सूत्र रखा, गायत्री मंत्र भी रखा। अब ये गायत्री मंत्र यहां रख दिया धीमहि, और इसको पढ़ना किसको है, कहा कि इसको कौन पढ़ सकता है, बोला सब पढ़ सकते हैं, स्त्री भी पढ़ सकती है। वैसे गायत्री मंत्र कब दिया जाता है, असल में जब गुरुकुल में बच्चा एडमिशन लेता है तब उसको जब जनेऊ पहनाते हैं तब उसको गायत्री मंत्र कान में गुरु देता है। तो स्त्री को तो जनेऊ पहनाया नहीं जाता, इसका मतलब गुरु के पास पढ़ने वेद नहीं जा सकती है। ये मर्यादा पर देखेंगे तो समझ में आएगा। तो इसका मतलब है, इसलिए इन भागवत को पढ़ सकती है माता जी, और स्त्रियों को तो घर में बैठ के भागवत पढ़ना ही चाहिए। भगवत गीता उपनिषद है, वेद है, उपनिषद वेद है, लेकिन उपनिषद वेद भी पढ़ने का सबको अधिकार नहीं है। लेकिन ये गीता उपनिषद महाभारत के अंदर ऐसे श्री कृष्ण ने रख दिया कि कहा कि ये स्त्री शूदर वैश्य और सब पढ़ सकते। ये क्रांतिकारी, श्री कृष्ण क्रांतिकारी, आध्यात्मिक क्रांति ये लाए कि महाभारत में भगवद गीता को रखकर सबको पढ़ने का अधिकार दे दिया, जबकि उपनिषद सब नहीं पढ़ सकते। और व्यास देव ने श्री कृष्ण के अवतार के रूप में ब्रह्म सूत्र को, वेदांत सूत्र को भागवत के अंदर रखकर सबको पढ़ने का अधिकार दे दिया, जो सब वैसे नहीं पढ़ सकते वेदांत सूत्र को। और चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण की प्रेममयी भक्ति को सरे आम सबको फ्री में दे दिया, जिसको मिलना असंभव था। तो ये कलयुक्त लोगों के ऊपर विशेष कृपा है। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, आप अमेरिकन और पाश्चात्य देश के यूरोपियन बच्चे मेरे शिक्षा के अंतर्गत भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु के कृपा के पात्र बने हो। इसके पीछे रहस्य केवल एक ही है कि चैतन्य महाप्रभु की शक्ति के बगैर कोई प्रचार नहीं कर सकता। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बगैर कलयुग के अंदर कृष्ण भक्ति प्राप्त करना असंभव है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में जो विकृति आई है, जो विकृति आई है, जो उनके अंदर पथभ्रष्ट आई है, उसके 15 नाम लिखे आज के प्रवचन में प्रभुपाद जी ने। कहते हम चैतन्य महाप्रभु के, बड़ी हंसी, प्रभुपाद हंसते हुए बोले, कहते कीर्तन करते बहुत सुंदर कीर्तन करेंगे, नृत्य करेंगे, पसीना पसीना हो जाएंगे, लोग कहेंगे वाह वाह क्या बड़ा कीर्तन किया है। लेकिन कीर्तन समाप्त होते ही कहते हैं बीड़ी देना, गला मेरा खुश हो गया, अरे तेरा सत्यानाश हो, भगवान के नाम के बाद तेरे को फिर बीड़ी कैसे याद आए। प्रभुपाद कहते हमने ये देखा है आंखों से, प्रभुपाद कहते मैंने आंखों से देखा है, ये कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा अच्छा जो स्टेज के ऊपर कलाकार गाते हैं ना बड़े सुर से, वो इतनी लंबी शराब की बोतल पीकर फिर आके स्टेज पे गाते हैं, हमने देखा है इनको। और लोग उन्हीं को बुलाते हैं, कहते बहुत अच्छा कलाकार आज यहां आया है और हम सब नाचेंगे, क्योंकि वो पहले ही बोतल के ऊपर चढ़ा हुआ नाच रहा है, तो आप भी नाचोगे, कोई भगवान के नाम में थोड़ी नाच रहे हो। तो ये प्रभुपाद जी की दूसरी विशेष आज के प्रवचन में से कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक अंतर है कि चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए हैं और अति उदार है, किसी को दंड नहीं देते हैं। भगवान श्री कृष्ण आए तो असुरों का सर काट दिया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब सुदर्शन चक्कर निकालकर जगाई माधाई को मारने को तैयार हुए, तब नित्यानंद प्रभु ने कहा आपका ये अवतार उद्धार के लिए है, संहार के लिए नहीं है, उद्धार के लिए है। अब क्या करना चाहिए? बोला अब इस वक्त आपका अस्त्र शस्त्र क्या है? हरि नाम संकीर्तन। भगवान के श्री कृष्ण संकीर्तन के द्वारा, वो कैसे संकीर्तन करना चाहिए? सांगो पांग उपनिषद, सांगो पांग अपने भक्तों के संग में। संकीर्तन का मतलब है भक्तों के संग में। ये भक्तों के संग में क्यों, ऐसे क्यों कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सब भक्त साथ मिलकर कीर्तन करें, ऐसे क्यों कहा? क्यों कि एक जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं, कलयुग में किसी को कहना कि हरे कृष्ण जपो एक घोड़े को दवाई देने के बराबर है। घोड़े को दवाई देने के लिए 6 आदमी चाहिए। 4 आदमी पांव पकड़ते हैं, 5वां आदमी मुंह खोलता है, 6ठा दवाई डालता है। इसलिए कलयुग में हरे कृष्ण जपाने के लिए भी टीम में जाना चाहिए, कुछ पांव पकड़ने वाले, कुछ मुंह खोलने वाले, नहीं तो घोड़े को दवाई पिलाना बहुत मुश्किल है। इसलिए अकेला जाओगे तो प्रचार करना बहुत मुश्किल है। संकीर्तन के अंदर जाओगे, मृदन है, खोल है, कीर्तन है, तब कुछ लोग देख के कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, कुछ करना चाहिए। तो संघ में जाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद ने कभी भी कहा बाहर जाओ किसी भी काम से तो एक भक्त नहीं जाए, कुछ साथ जाओ। साथ जाना बहुत जरूरी है। भक्तों के संघ के बगैर किसी वक्त कहीं भी हम अपने रास्ते से भटक सकते। तीसरी क्या विषय, तो दूसरा अध्याय पूरा आदि लीगरा का इस एक श्लोक को समझाने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु परम पुरुष भगवान है साक्षात। अंतर दोनों में क्या है? भक्त के रूप में आए। तो कोई पूछे कौन से भक्त के रूप में आए? श्री कृष्ण अगर भक्त के रूप में आए तो कौन से भक्त के रूप में आए? भाई भक्त भी तो असंख्य है ना। जैसे अभी हम कभी कभी कहेंगे भाई भक्त, भक्त का नाम जब भी कोई लेगा तो प्रहलाद महाराज का नाम आ जाएगा, ध्रुव महाराज भक्त हुए, ऐसे नाम एकदम आते हैं जबान पे आ जाएंगे। भक्ति कैसे करो बोले जैसे ध्रुव प्रहलाद ने की। तो कौन से भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु आए? तो कहते हैं तो भक्त की परिभाषा क्या है? बोला भक्त की परिभाषा है जो पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करे और उसकी सेवा करे, ये भक्त की परिभाषा है। इसी को भक्त कहते हैं, 100% श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो और उसकी सेवा में संलग्न हो, उसको भक्त कहते हैं। अब जब भगवान को ही भक्त बन के आना हो तो भगवान पूर्ण है तो उसको भक्त भी पूर्ण बन के आना चाहिए ना। ध्रुव महाराज भक्त, ध्रुव भक्त जो अर्थार्थी भक्त में आता है, अर्थार्थी भक्त है ध्रुव महाराज, और भक्ति की लाइन से बाहर है असल में। जो जहां से भक्त कहा जाता है उस लाइन के किनारे के बाहर खड़े है वो। अर्थार्थी भक्त का मतलब उसको तो अभी कुछ चाहिए था राज पिताजी का। तो भगवान श्री कृष्ण अगर भक्त बन के आना है तो फिर तो पूर्ण भक्त बन के आएगा तब ना। और पूर्ण भक्त की परिभाषा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने क्या दी है भगवद गीता में, सर्वधर्मान परित्यज मन मना भव मद भक्तो। तो ऐसा कौन सा भक्त है जो सर्वधर्मान परित्यज है? गोपियां, और गोपियों में भी राधा रानी। परिपूर्ण भक्ति की परिकाष्ठा जो है वो राधा रानी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव को अंगीकार करके भक्त के रूप में आए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण एक ही है तत्व में। यहां तत्व कौन से की बात की जा रही है? भगवद गीता के उस श्लोक को लिया है, तत्व शब्द भागवत के उस श्लोक से लिया है। कौन से श्लोक से? अद्वैतम तत्वम। कौन सा? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। ये भागवत का श्लोक है, इसमें से तत्व शब्द यहां लिया गया है। तो वो को तीन जो है परमात्मा, योगी जिसको हृदय में देखते हैं चतुर्भुज रूप में होता है, ब्रह्म जो भगवान से के स्वरूप से निकलने वाला प्रकाश है जिसको ज्ञानी लोग प्राप्त करके उसमें लीन होना चाहते हैं, और भगवान जो भक्तों का धन है। और इस परिभाषा में परम तत्व क्या है? भगवान। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। देखो इस भगवान के अंदर तीन चीजें आ गई ना, ब्रह्म आ गया, परमात्मा आ गया, भगवान के अंदर दो। लेकिन भगवान की शक्ति भगवान के साथ में खड़ी है, अंदर नहीं आ गई। तो चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण के अंदर एक ही है, लेकिन अंतर क्या है? श्री कृष्ण में नैपुण्य भक्ति, परिपूर्ण भक्ति की परिकाष्ठा राधा रानी जब जोड़ दिया जाएगा, प्लस किया जाएगा, तब चैतन्य महाप्रभु बनेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्लस परिपूर्ण भक्ति, नैपुण्य भक्ति राधा रानी, दोनों मिलके एक हो गए, तब चैतन्य महाप्रभु हो गए। यही भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में अपने ही आनंद के लिए, अपने ही आनंद के लिए, अपने ही वाम भाग से, अपने ही लेफ्ट साइड से राधा रानी को उत्पन्न किया। और फिर हम सबको उस आनंद का रस आस्वादन कराने के लिए जब चैतन्य महाप्रभु बने, तब उसी राधा रानी को फिर अपने अंदर समा लिया। पहले राधा रानी को अपने से अलग किया अपने आनंद के लिए, इसलिए राधा रानी अहलादिनी शक्ति कराए कृष्ण रसास आस्वादन, कृष्ण को आनंद देने के लिए अहलादिनी शक्ति है। फिर आगे चैतन्य में लिखा है, अहलादिनी शक्ति करे भक्ति र पोषण, भक्तों का भी पोषण करती है, जैसे मां करती है, वो अहलादिनी शक्ति करती है। भक्तों का पोषण करने के लिए जो अहलादिनी शक्ति अलग थी, उसको श्री कृष्ण ने अपने अंदर समा लिया। समा भी किया, अपने लिए अंदर ऊपर ओढ़ लिया। समाने से क्या है, उसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, ओढ़ने से बाहर नजर आ जाएगी। चैतन्य महाप्रभु गौरंग महाप्रभु आए, बनकर आए, तो भक्ति को अपने अंदर, परिपूर्ण भक्ति को अपने अंदर अपने साथ मिला लिया। तो भक्त के रूप में कैसे चैतन्य महाप्रभु आए? भक्ति की परिकाष्ठा को अपने साथ जोड़कर आए। अब हम हरे कृष्ण मंत्र में किसको प्रार्थना करते हैं कि हमको कृष्ण की सेवा में लगाओ? राधा को। अब चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण दोनों में एक ही है, दोनों एक ही हैं। और चैतन्य महाप्रभु को जाके चरण पकड़ना बहुत आसान है, पति तपावन है, पति तुम्हारा उद्धार करना है। लेकिन राधा रानी के चरणों के पास जाने की हिम्मत करने को हरे के पास दम नहीं। राधा रानी तो बहुत दूर की बात है, ललिता सखी की उपासना जैसे शेरनी को दूध, या तो पिए शेर का बच्चा, नहीं तो सोने के बर्तन में उसको रखा जाता है। आपने कभी शेरनी का दूध देखा है? नहीं देखा है किसी ने ना? क्यों नहीं देखा है? शेर का बच्चा पीता है, नहीं तो कोई बर्तन में रखोगे तो फट जाएगा बर्तन, रखा नहीं जा सकता। पहला दुहेगा कौन शेरनी को? ये आचार्यों ने लिखा है कि ललिता सखी की उपासना, इसका मतलब गोपी भाव की उपासना शेरनी के दूध पीने के बराबर है। शेर या तो शेर का बच्चा पीता है, नहीं तो सोने के बर्तन में ही केवल रखा जाता है। सोने के बर्तन किसी घर में है क्या? चांदी के दिखेंगे, सोने के बर्तन देखे हैं क्या? कहीं देखेंगे सोने का बर्तन? नहीं देख रहा है। तो शेरनी का दूध नहीं रखा जा सकता। तो ये भक्ति करना बहुत दुर्लभ थी इसका अर्थ है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करना बहुत आसान है। वही भक्ति जो बहुत मुश्किल थी वो बहुत सरल हो गई। पापी तापी लोगों को बहुत सरलता से ये भक्ति मिल गई। वो अमेरिका के हिप्पियों को जाके वो भक्ति मिल गई, ये कोई साधारण बात नहीं है। जो हिमालय के अंदर तपस्या करके हजारों लाखों साल तक बैठ के जो प्राणायाम आदि करके समाधि में बैठते थे, उनको भी थोड़ी देर के लिए वो आनंद नहीं मिलता था? वो न्यूयॉर्क के अंदर हिटी नाचते हुए भगवान के कीर्तन में उस आनंद का लाभ ले रहे हैं? ये चेतन महाप्रभु की कृपा, ये संभव नहीं है वैसे। इसलिए आखिरी लाइन में प्रभुपाद जी ने ये लिखा, आप वेस्टर्न और यूरोपियन और अमेरिकन लोगों को प्रभुपाद चेतन महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई है। ये शब्द जो लिख रहे हैं कि चेतन महाप्रभु ने जब ये कह ही दिया था, पृथ्वी से आते यत्र नगर आदि ग्राम, पूरे धरती के ऊपर जितने भी गांव हैं, नगर हैं, वहां सब मेरे नाम का प्रचार होगा, कृष्ण नाम का प्रचार होगा, तो वो सत्य है। कैसे कहा था कि मैं भक्ति के रूप में आया हूं और वो बहुत भक्त बनेंगे और भक्त इस प्रचार को करेंगे, ये प्रचार भक्त करेंगे मेरा, इसलिए भक्त बन के आए महाप्रभु और भक्त बनाने का ही अभियान शुरू किया। भक्त ही बनाए जहां गए वहां, पूरे दक्षिण भारत में 4 साल भ्रमण किया भक्त बनाने के लिए। 4 साल है कि पहले 4 साल है मेरे ख्याल में, कोई काम नहीं था। कह रहे थे कि मैं अपने भाई को ढूंढने जा रहा हूं, भाई का बहाना था, लेकिन दक्षिण भारत में सारे बहुत बड़े बड़े दिग्गज फिलोसॉफर थे, वहां मतभेद हो गया था, तो वहीं जाके प्रचार किया। भक्ति आई कहां से? भक्ति का महात्म पढ़ा है भागवत में, पद्म पुराण की है महात्म जो भक्ति का है, उसमें लिखा है भक्ति दक्षिण देश में शुरू हुई, उसका जन्म दक्षिण देश में हुआ, कर्नाटक में थोड़ी पली, फिर महाराष्ट्र में भी कुछ लोगों ने उसका सेवन किया, गुजरात में आकर जर्जर हो गई, क्योंकि गुजरात पाप का खंड है, खंड में वो सिर्फ खांड ही खाते हैं वो पाप का खंड है। लेकिन वृंदावन में आई तो भक्ति फिर जवान हो गई। तो महाप्रभु ने पहला प्रचार कहां शुरू किया? जहां भक्ति का जन्म हुआ है, दक्षिण भारत में। महाप्रभु ने प्रचार वहां से शुरू किया। सिर्फ नवद्वीप के अंदर जितने दिन रहे वो तो केवल श्रीवास आंगन में अपने निज परिकरों के संग में कीर्तन किया, और किसी को अंदर नहीं आने दिया। और ये पूरा 1 साल जागरण किया चेतना महाप्रभु ने, इसको पूरी रात जागते थे, लेकिन पूरी रात कीर्तन करते थे हरे कृष्ण का, और केवल उन भक्तों के संग जिनको अंदर आने का अधिकार था, सब नहीं आ सकते थे। लेकिन प्रचार कहां किया? जहां भक्ति का जन्म हुआ है। और महाराष्ट्र तक गए, गुजरात कभी नहीं आए। महाप्रभु गुजरात आए हैं कभी? मिलता है कहीं? नहीं मिलता। वृंदावन आए थे क्योंकि वहां भक्ति का जन्म ही नहीं हुआ, वहां बूढ़ी हो गई तो वह गए नहीं। आश्चर्य लगता है नहीं, जहां जहां से भक्ति आई है उसी रूट के ऊपर महाप्रभु आए हैं। देख लीजिए, कर्नाटक पूरा दक्षिण भारत से होते महाराष्ट्र तक आए हैं, पंढरपुर में आए हैं। तो भक्ति का प्रचार करते हुए महाप्रभु ने यह विशेष आंदोलन स्थापित किया भक्त बनाने के लिए, क्योंकि यहां इस पूरे क्षेत्र में भक्ति का क्या होता है, क्या कहेंगे, भक्त यहां बनते हैं। इस क्षेत्र के भक्त आज भी आप देखोगे कहीं, आपको भक्त कहां से मिलते हैं देख लेना, बंगाल से और ओडिशा से ज्यादा भक्त मिलते हैं। अभी भी देखो संस्था के अंदर कहीं से भक्त मिलेंगे सर, इस क्षेत्र के भक्त आपको, फिर महाराष्ट्र से बहुत अधिक भक्त मिले, फिर दक्षिण भारत में यहां तक महाप्रभु वृंदावन तक आए थे, पूरे यूपी के अंदर से, बिहार के अंदर से, यहां से भी बहुत भक्त मिल रहे, पूरे झारखंड से आए थे महाप्रभु। ये दिखने में क्या, देखो साफ लगता है बहुत प्रयास करके थक गए, 1-2 भक्त भी मुश्किल से बनते हैं, और कहीं जाके प्रयास करते हैं नहीं बन पाते, लेकिन फिर भक्त जाके दूसरा ये काम और कहीं कर लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये महाप्रभु के प्रचार का क्षेत्र ऐसा रहा, ऐसे दिखने में आ रहा है। तो हमको आज प्रभुपाद जी की शिक्षा से ये सीखना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बगैर कृष्ण भक्ति संभव नहीं है, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा नित्यानंद प्रभु की कृपा के बगैर संभव नहीं है, और नित्यानंद प्रभु की कृपा किसी को तभी प्राप्त होती है जब वो बहुत ही नीच से नीच लोगों को जाकर प्रचार करता है। नित्यानंद प्रभु की कृपा कब मिलेगी? जब प्रचार करने जाएंगे, और उनको प्रचार करने जाएंगे जो बहुत ही दुष्ट लोग हैं, उनके ऊपर करुणा करने के लिए कोई प्रचार करने जाएगा तो नित्यानंद प्रसन्न होता है, नित्यानंद प्रसन्न होता है, महाप्रभु प्रसन्न होते हैं, चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं तो कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। ये रेसिप्रोकल है, जितना आप रिस्क उठा के प्रचार करोगे उतना नित्यानंद की कृपा प्राप्त होगी, उतनी चेतना महाप्रभु का कृपा होगी, उतना कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। इसलिए रिस्क किसने उठाई सबसे बड़ी? श्रील प्रभुपाद ने। वृंदावन छोड़ के 70 साल में जब लोग मरने के लिए तैयारी करते हैं, खटिया के ऊपर पड़े रहते हैं, उस वक्त इतना बड़ा जोखिम उठाकर और ऐसे देश में ऐसी उम्र में गए, ये बहुत बड़ा रिस्क उठाया कृष्ण के लिए। और जगाई माधाई तो दो थे केवल उस वक्त में मायापुर में, और उस वक्त तो अमेरिका यूरोप पूरा जगाई माधाइयों से भरा हुआ था। उनको जब प्रचार किया तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से, चेतना महाप्रभु की शक्ति से कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरी दुनिया में होने लगा। तो हमको संकेत क्या मिल रहा है, हमको भी रिस्क उठाना चाहिए कृष्ण प्रचार करने के लिए, तभी असल में चेतना महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। प्रचार 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 ही सार है। तो संदेश हमारे लिए आज का ये है कि चेतना महाप्रभु कृष्ण भक्ति दे रहे हैं किसको? जो भगवान के नाम का प्रचार कर रहा है। और ये भी कृष्ण की ही शिक्षा है श्री कृष्ण की भगवद गीता में, जो भगवद गीता का प्रचार करता है उससे ज्यादा न कोई मुझे प्रिय था, न है, न होने वाला है भविष्य में। तो इस श्लोक आज के प्रवचन का हमको संदेश ये लेना चाहिए, भगवद गीता का अधिक से अधिक, भगवद गीता और उसकी शिक्षाओं का वितरण करने के लिए हमें कुछ समय नित्य निरंतर निकालना चाहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। और किसी को कुछ इसी लेक्चर से कुछ जिज्ञासा है? आधा घंटा हो गया। हरे कृष्ण।